श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज और रसिकानंद प्रभु का थेरो बहुत ही साथ में हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज जी का भी आज डिसअपीयरेंस डे है। तो हम जगन्नाथ महाराज बाबा जी के लिए उनका प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे और फिर हम आज का कक्षा को प्रारंभ करते हैं। गौर विभावर भूमस्त्वम् निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। गौर विभावर भूमस्त्वम् निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। गौर विभावर भूमस्त्वम् निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरूभश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो महान वैष्णव आचार्य जगन्नाथ बाबा जी महाराज और रसिकानंद प्रभु, ये इनके बारे में वर्णन करना मतलब तुच्छ जीव के लिए बहुत मुश्किल है, और वैष्णवों के आदेश अनुसार इस पर बोलने का प्रयास करेंगे, त्रुटि होंगी तो क्षमा कर देंगे, मुझे आशा है आप सब। हरे कृष्ण। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज का जो चरित्र है वो एक ऐसे वैरागी का चरित्र है जो कि सीखने योग्य है। और अब देखते हैं कि जगन्नाथ बाबा जी महाराज और रसिकानंद प्रभु में एक समानता है। क्या समानता है? जबकि रसिकानंद प्रभु बहुत समय पूर्व पहले आए थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज से पहले, लेकिन ये समानता है कि जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो हैं वो रसिक मंजरी हैं, है ना, अपने कृष्ण लीलाओं में रसिक मंजरी हैं। और देखिए रसिकानंद प्रभु जो हैं उनका भी तिरुभाव उसी दिन है और रसिक मंजरी का तिरुभाव भी उसी दिन है, तो कुछ ना कुछ समानता, रसिक मतलब रस की समानता जो है ना वो दोनों में समान दिखती है। तो इस प्रकार से हमारी गुरु परंपरा के ऑल्टर पे सदा जगन्नाथ बाबा जी महाराज विराजमान रहते हैं। तो उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाती है? उनको प्रणाम करके, उनके प्रणाम मंत्र बोलकर, उनकी कथाओं का श्रवण करके, यही सेवा है एक वैष्णव की, या तो वापु सेवा या वाणी सेवा। वापु सेवा तो हमें करने का सौभाग्य नहीं है, लेकिन वाणी सेवा कर सकते हैं उनके बारे में श्रवण करके। तो वैष्णव कहते हैं अगर मेरे बारे में सुनोगे ना तब भी वही कृपा है जो मेरी सेवा करने से कृपा मिलेगी, है ना। तो अब उनके बारे में हम कुछ चरित्र चर्चा करेंगे। कहते हैं जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो थे ना, कई जगह पर उनको बताया गया 144 वर्ष तक वो जिए, कुछ लोग बोलते हैं 147 वर्ष तक उन्होंने लीलाएं करी, कुछ लोग कहते हैं 150 वर्ष तक लीला करी, मतलब काफी लंबी उम्र, 100 वर्ष से कहीं अधिक कलयुग की जो उम्र दी गई है उससे कहीं अधिक उन्होंने अपना समय लीलाओं में गुजारा। कहते हैं नवदीप में 1750 ईस्वी में, जो हमारा अभी चल रहा है साई में, इसे 1750 ईस्वी में उनका जन्म होता है नवदीप ग्राम में, और उनके जो दीक्षा गुरु हैं वो वृंदावन में, उनके दीक्षा गुरु में भी काफी सारे मतभेद हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था एक समाधि पुस्तक से, तो उसमें कुछ और वर्णन है, और एक पुस्तक है ये जो कि मैंने वहीं से मायापुर से प्राप्त की थी बाबा जी महाराज की समाधि से, तो इसमें जो है कुछ और वर्णन है। तो जो भी है, हम ओवरऑल क्रक्स अगर देखें तो उनके दीक्षा गुरु बताए गए श्रृंगार वट पर एक जगदानंद गोस्वामी महाराज, और कुछ लोग कहते हैं गोवर्धन के कृष्णदास बाबा जी महाराज से उन्होंने बाबा जी की दीक्षा लिया। तो जगदानंद गोस्वामी महाराज ने उनको दीक्षा दिया, और उसके बाद में उन्होंने बाबा जी का दीक्षा लिया कृष्णदास महाराज बाबा जी से। लेकिन उनके जो शिक्षा गुरु है जिनका चर्चा हमेशा आती है, उनका नाम है सूरज कुंड, सूर्य कुंड है एक वृंदावन में, वहां पर रहने वाले मधुसूदन दास बाबा जी महाराज। तो इसका मतलब उनके जीवन में तीन वैष्णव है, एक है जगदानंद गोस्वामी, एक है कृष्णदास बाबा जी महाराज, और तीसरे है मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, और ये तीनों ही वृंदावन में है। नवदीप में जन्म लेने के बाद भी बाबा जी महाराज का बड़ा ही अगाढ़ प्रेम था वृंदावन के प्रति, और बाबा जी ने कहा वृंदावन और नवदीप अभिन्न है, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों जगह समानता है। उन्होंने कहा लेकिन एक चीज का भेद है, कृष्ण जो है ना वृंदावन के अंदर वो रूल्स लगाते हैं, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब कुछ त्याग दो, मेरी शरण में आओ, उसके बाद मेरे धूल में लेटो, इसकी कृपा करो, कर्ण के धूल में लेट करके व्रज रज को मस्तक पे लगाओ, व्रज रज को खाओ, व्रज वासियों के साथ रहो, तब कृपा मिलेगी। लेकिन नवदीप में ऐसा नहीं है, नवदीप में उन्होंने कहा नवदीप में कितना भी अपराध कर लो वहां पर क्या मिलता है, कृपा ही मिलती है ना। ऐसा है जैसे कि वृंदावन में शहद की डब्बी बंद करके रखी हुई है और नवदीप में शहद की डब्बी खोल कर रखी हुई है, यहां पर डब्बी खोलने का प्रयास करना पड़ेगा तब कृपा मिलेगी, है ना, जैसा दामोदर लीला में नवदीप में बिना प्रयास की कृपा मिल रही, शहद बह रहा है बाहर, है ना। और बाबा जी महाराज एक दृष्टांत भी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यशोदा मैया को जब उनकी एक मटकी फोड़ देने पर कृष्ण के प्रति बहुत ही क्रोध आ गया, तो मैया पीछे पीछे भाग करके काना को पकड़कर उखल से बांध देती हैं। क्यों? एक मटकी फोड़ने के कारण कृष्ण को दंडित किया जा रहा है। लेकिन वही समान कलयुग में होने वाली कृष्ण लीलाएं जो कि गौरंग महाप्रभु की लीलाओं के रूप में प्रस्तुत हो रही हैं, सैकड़ों मटकी फोड़ने के बाद भी सची माता ने कभी उनको दंडित नहीं किया। तो बाबा जी कहते थे यहां नवदीप में सिर्फ कृपा ही कृपा है, प्रेम ही प्रेम है, कोई दंड का यहाँ पर कार्य नहीं होता, इसीलिए भक्त हर वर्ष नवदीप जाते हैं कृपा प्राप्त करने के लिए। बाबा जी महाराज जो थे वो एक उन्नत वैष्णव के रूप में माने जाते थे, उन्होंने जो कह दिया बहुत सारे लोग उसका अनुगमन करते थे। बाबा जी महाराज का कहा हुआ पत्थर की लकीर के रूप में माना जाता था। बाबा जी सभी स्थानों में जाते थे, नवदीप, व्रजमंडल और पुरुषोत्तम क्षेत्र। लेकिन उनके जो एक शिष्य मिले उनको, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट, लेकिन वो किससे, किसके शरण में चले गए, एक ऐसे बाबा जी की शरण में जो कि कैसे रहते हैं व्रज रज में धूल लगाते रहते हैं, ऐसे बाबा जी को एक मजिस्ट्रेट सरेंडर हो रहा है। और क्या कह दिया उन्होंने, ये प्रणाम मंत्र प्रदान किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, कहते हैं मैं उन जगन्नाथ बाबा जी को सादर नमस्कार करता हूं जो समस्त वैष्णव समुदाय द्वारा सम्मानित है। मतलब उनको बोल दिया गया कि जितने भी वैष्णव हैं उनमें सम्मानित एक ही हैं बस, तथा जिन्होंने गौरंग महाप्रभु की आविर्भाव भूमि की खोज की थी, और बाद में ये भी पता लगाया कि गौरंग महाप्रभु किस स्थान में रहते हैं, और इसलिए उन्होंने उनको वैष्णव सार्वभौम की उपाधि भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया। तो हम लोग सुबह अभी बोलते हैं सार्वभौम वैष्णव श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। तो बहुत ही उन्नत वैष्णव है, सार्वभौम समझ सकते हैं ना, भौम मतलब भूमि, सार्व मतलब पूरी भूमि में कोई इनसे बड़ा वैष्णव हो नहीं सकता। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने जबकि अपनी दीक्षा लिया था विपिन बिहारी दास गोस्वामी महाराज से, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण करी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से, इसीलिए ऑल्टर पर हमारी शिक्षा प्रणाली में उनका फोटोग्राफ है। कई बार भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये दीक्षा परंपरा है, लेकिन रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हमारी जो परंपरा है ये शिक्षा परंपरा है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कौन सी शिक्षाएं ले रहे हैं, किसके अंडर शिक्षाएं ले रहे हैं। शिक्षा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जीवन में आपने दीक्षा लिया और शिक्षा नहीं लिया और उसे अपनाया नहीं जीवन में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जहां भी दीक्षा लें उस परंपरा के सभी शास्त्रों को सभी वैष्णवों के सेवा भाव अनुसार श्रवण करते हुए और अपने जीवन में अपनाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपनाना, खाली श्रवण करना, श्रवण करने के बाद में मनन करना, मनन करने के बाद में निधिध्यासम अपनाना, उसके बाद में आता है आत्म साक्षात्कार। तो इसलिए खाली श्रवण, लोग बोलते हैं श्रवण शुद्ध चित्त करे उदय, खाली श्रवण करने से शुद्ध चित्त का उदय होता है, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल जाएगा शुद्ध चित्त उदय होने पर, लेकिन श्रवण 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 करते रहे लेकिन उसका फल नहीं मिलने वाला। क्यों? बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए प्रभु पदे प्रेम दान। भगवान का बहुत बहुत जन्म तक भी अगर श्रवण कीर्तन करेंगे फिर भी कोई फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ना मननम है, ना निधिध्यासम है, ना ही उसके बारे में सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, इसमें से क्या कोई एक चीज मेरे अपनाने योग्य है। तो हर कक्षा में बैठने से पहले एक भक्त का टारगेट होना चाहिए, आज मैं अपने जीवन में अपनाने योग्य कोई एक वस्तु क्या लेके जाऊंगा, और फिर उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद वो फेल होगा, फिर प्रयास, फिर फेल, फिर प्रयास, फिर श्रवण, फिर मनन, फिर प्रयास, और फिर क्या होगा, एक समय आत्म साक्षात्कार होगा। तो इस प्रकार से बाबा जी महाराज वर्णन करते थे कि हर भक्त को अपने जीवन में अपनाने में बहुत ध्यान देना चाहिए। उनकी ऐसी आयु हो गई थी कि उनको कहते हैं कि शरीर पूरा ऐसे गोल हो गया था, झुक गया था, तो उनको गोलाकार बाबा जी के नाम से भी पुकारते थे। गोलाकार बाबा जी का मतलब सिर जो था घुटनों पे ऐसे चला गया था, तो गोलाकार बाबा जी भी बोले जाते थे। सोचिए आप, ऐसी अवस्था में भी वो अपने गिरिराज गोवर्धन के प्रति बड़ी समर्पित थे, क्योंकि उनके जो दीक्षा गुरु थे कृष्णदास गोस्वामी और कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो गोवर्धन में रहते थे, तो गोवर्धन के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, और वहां से उनको एक शिला भी मिला था, गोवर्धन शिला, जिस पर वो रोज तुलसी मंजरियां अर्पित करते थे। लेकिन ऐसी अवस्था हो गई थी बुढ़ापे में कि शरीर झुक गया था, आंखों के ऊपर पलकें ऐसे बैठ गई थी पूरी, यहां तक हमारी त्वचा जो है ना ये शरीर को छोड़ जाती है कुछ समय बाद बुढ़ापे में, और आप देखेंगे झूल जाती है। अभी तो हमें बड़ा घमंड होता है स्ट्रांग बॉडी, लेकिन उसके बाद में ये झूल जाती है, शरीर में से त्वचा भी बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हारी नहीं हूं, वो भी छोड़ जाती है शरीर को। तो बहुत ही जरूरी है समझना, लोग बोलते हैं अपने शरीर पर बड़ा घमंड करते हैं, मेरा शरीर सुंदर, मैं ऐसा, मैं वैसा, लेकिन देखा जाए तो मैं सुन रहा था हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज एक कथा में वर्णन कर रहे थे कि ये शरीर क्या है, खून पीप मांस इसका क्या बना हुआ, एक थैला है। सोचो एक पैकेट रखा हो काले रंग का, उसमें पूरे मंदिर के भक्तों की पीप खून और पस और मल मूत्र रखा हो, तो कितने लोग उसे गले लगाना चाहेंगे, है ना। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हमारे अंदर तो महाप्रसाद भी है, मटर पनीर भी है, चावल छोले भी है, लेकिन आप देखिए हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, है ना, 9 द्वार बोले जाते हैं ना, 9 द्वारों का पिंजरा रहता पंछी कौन, कौन पंछी रहता है, हम आत्मा। तो इस प्रकार से ये 9 द्वार है, इसमें 2 कान 2 आंखें 2 नथने और हमारे जनेन्द्रियां एक जिह्वा मुंह, तो ये जो 9 है इन 9 से जब भी कुछ निकलेगा तो क्या निकलेगा, गंध ही निकलता है। आंखों से निकलेगा तो क्या निकलेगा, कीचड़ निकलेगा, है ना, कान से निकलेगा तो मैल निकलेगा, नाक से निकलेगा तो मैल निकलेगा, मुंह से निकलेगा तो अगर कुछ खाया बाहर निकल गया या तो थूक निकलेगा या फिर वॉमिटिंग वमन हो जाएगा, उल्टी आ जाएगी, नीचे से तो आप जानते हैं मल और मूत्र का विसर्जन। तो कहां से वो चीज निकलती है, तो उसके अंदर वो चीज तो होगी तभी तो निकलती है। जैसे कोई पैसे वाले के पॉकेट में हाथ डालो तो उसके से गड्डी 500 1000 के नोट 2000 के नोट निकलेंगे, गरीब के में डालोगे तो 10-10 रुपए के निकलेंगे, भक्तों के डालोगे तो महाप्रसाद निकलेगा, है ना। तो इस तरह से सबके पास कुछ ना कुछ है, तो जो थैले में है वही तो बाहर निकल रहा है, तो अंदर क्या भरा हुआ है, क्या भरा है, गंदगी, है ना, तो इसीलिए बाहर निकल रही। तो महाराज बोल रहे थे बहुत कृपा है भगवान की, ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि शरीर पर चमड़ी दे दी है, है ना, ये चमड़ी बड़ी विशेष कृपा है। अगर एक कट लग जाता है और खून निकलता है तो उस पर पहले आकर के कौन सा जानवर बैठता है, कौन सा पक्षी बैठता है, कौन बैठता है? मक्खी। मक्खियां कहां बैठती है? प्राय गंदगी पर। तो ये बताता है कि शरीर में तेरे गंदगी भरी हुई है, इसीलिए आके बैठ रही है। विशेष कृपा है, बांध रखा है चमड़ी से चारों तरफ से, और हमें कुछ एहसास ही नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि अरे हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, है ना। लेकिन ये सच्चाई है, हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे हैं, एक मल मूत्र मांस पीप के खाली एक थैले हैं। उसके लिए बहुत बिजी रहते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सोच करके पता नहीं हम क्या अचीव कर लेंगे लाइफ में, बहुत छोटे से। और आत्मा तो आप जानते ही हैं, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो ये ऐसे जो सार्वभौम वैष्णव हैं, इनके चरित्रों से हमें सीखना चाहिए कि हम ऐसा प्रयास करेंगे, हम भी ऐसा कुछ इमिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम प्रयास करेंगे उनका अनुगमन करें, उनका पालन करें, उनके बताए रास्तों का। तो ऐसे भगवान, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उनकी पलकों को उनके दो सेवक उठाते थे तब वो गोवर्धन का दर्शन करते थे, और दर्शन करने के बाद में फिर अपनी मंजरी आदि उन पर चढ़ाया करते थे। बिहारी दास उनके एक भक्त थे, यहाँ पर उनके शिष्यों का नाम भी वर्णन किया गया है। कहते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे ना, उनके 7 महत्वपूर्ण शिष्य हुए हैं। पहले थे बिहारी दास बाबा जी महाराज, जिनकी सदा चर्चा करते हैं, बिहारी कह के उनका सेवक कह के। फिर उनके भगवान दास बाबा जी महाराज, उन्होंने दीक्षा दिया। गौर हरिदास बाबा जी, राम हरिदास बाबा जी, राम दास बाबा जी महाराज, और वर्षण बासी नित्यानंद बाबा जी महाराज, कदम खंडी बासी हरे कृष्ण दास बाबा जी महाराज। तो ऐसे 7 उनके शिष्य थे, रुक्मणी द्वारकाधीश जगन्नाथ गौरपाद की। तो ऐसे 7 उनके महत्वपूर्ण शिष्य है, जिसमें से सबसे ज्यादा सेवा उनकी करी है जो बिहारी दास बाबा जी महाराज, जिनको हम चर्चा में बिहारी के नाम से पुकार। तो बिहारी दास बाबा जी महाराज जो थे, वो अपने गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी में बिठाकर, इतनी बड़ी टोकरी सिर पर रख करके चलते थे। और बाबा जी महाराज के बारे में बिहारी दास बाबा जी वर्णन करते हैं कि बाबा जी का शरीर, आप सोचो 140 या 150 साल का या फिर 100 साल का कोई व्यक्ति है, उनको उठा करके सिर पर रख रहे तो बहुत भारी होंगे ना। लेकिन जब उनको सिर पे रखते थे तो उठाने में टोकरी, 3-4 शिष्य मिलकर टोकरी सिर पे रखते थे, परंतु जब वो चलना प्रारंभ करते थे तो ऐसा लगता था जैसे रुई की कोई टोकरी है, रुई भरी हुई है, इतने हल्के हो जाते थे। और जैसे ही कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती थी, जैसे ही कीर्तन सुनाई देता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बाबा जी टोकरी से कूदा करते थे, बाहर आ जाते थे, और 4-4 फीट, बताते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति 4 फीट की ऊंचाई तक जंप करता है। हम भी नहीं करते, हमें बोला जाता है इस ग्रह समोगला पर, बोलते हैं कूदो गोंद निकालो, पैर से ऐसे करो, फिर भी हम कूद मार के 4 फीट नहीं कूद पाएंगे जमीन से, 4 फीट, इतना कैसे व्यक्ति कर पाएगा? वो विलक्षण प्रतिभा विभूति भक्त संत जो है ना, वही कर सकते हैं। हमेशा कीर्तन किया करते थे तो उच्च स्वर में, जप करते थे उच्च स्वर में। लोग बोलते थे बाबा जी आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा धीरे जप किया करिए। कहा नहीं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किस लिए कर रहा हूं? मेरे आसपास जितने भी जीव जंतु है ना, इन सब के उद्धार के लिए। और हमेशा एक भजन बहुत गाते थे, तो हम लोग भी गाएंगे। क्या भजन गाते थे? निताई की नामा ए नाची रे, निताई की नाम निताई की नामा ए नाची रे, निताई की नाम नाची रे, ए निताई की नामा दिते छी रे, निताई की नाम दिते छी रे, हाँ निताई की नाम दिते छी रे, निताई की नाम दिते छी रे, हाँ निताई की नामा ए नाची रे, निताई की नाम ए नाची रे, निताई की नामा दिता छी रे, निताई की नाम दिते छी रे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह से निताई मतलब कि निमाई से भी बढ़कर के निताई है ना। तो बोलते हैं निमाई जो है ना वो किसके लिए है, निमाई इज फॉर द क्लासेस, मतलब वो सिर्फ क्लासेस भक्त जो है ना, क्लासिकल भक्त एकदम महत्वपूर्ण उनको उन्होंने भक्त बनाया, जो शिरोमणि है अपनी अपनी संप्रदाय परंपराओं, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, वो बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, उनको प्रचार करा किसने, निमाई पंडित ने। लेकिन निताई कैसे है, निताई ने प्रचार किया जगाई मदाई को, निताई ने प्रचार किया जा जाके गलियों में घूम घूम कर। तो कहते हैं निमाई इज फॉर द मासेस एंड निताई इज फॉर, निमाई इज फॉर द क्लासेस एंड निताई इज फॉर द मासेस। हम सब मासेस के लिए कौन है, निताई है। इसलिए जगन्नाथ बाबा जी महाराज हमेशा गाते थे निताई की नाम है नौची रे, कैसा नाम दे दिया है आपने, निताई की नाम दिता ची रे, आपने कैसा नाम लेने के लिए कह दिया है, कैसा नाम दे दिया है कि अब हरे कृष्ण मंत्र के अलावा और कुछ इस जुबान से निकलता ही नहीं है। कैसे निकलता था हरे कृष्ण महामंत्र, कहते हैं पूरी रात्रि कीर्तन करते थे, 3 बजे उठ करके बैठ जाते थे, 1108 दंडवत करते थे उठने के बाद अपने श्री विग्रह को। सोचिए गिरिराज गोवर्धन और सोनार गोरांगा, सोने के गोरांग थे उनके पास में, उनकी सेवा करते थे 1108 मतलब 1108 दंडवत घर में मानसिक रूप से उनको प्रणाम करते थे। कैसी अवस्था में आपने सुना, कैसी अवस्था है, हम करते एक बार दंडवत करना हो उसके बाद में मंदिर से बाहर चले जाएं, दोबारा किसी काम से मंदिर में गार्लैंड लेने आना पड़े, दंडवत करने में टेंशन लगता है कि दोबारा करूं, चलो एक ही बार में 3 मंत्र निपटा देता हूं, 3 बार कहां लेटूंगा, समय बहुत कम है मेरे पास, मुझे प्रचार करना है। 1108 दंडवत, चतुर्मास कैसे रखते थे बाबा जी, बहुत ही वैरागी, कहते पूरा दिन नाम जप करते थे, रात्रि नाम जप करते थे, संध्या समय सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करते थे, उसमें भी पहले महीने में सिर्फ केले खाते थे, दूसरे महीने में अमरूद का फल, तीसरे महीने में मठा पी करके गुजारते थे और चौथा महीना नमक रहित उबले हुए फल आदि सब्जी उबाल करके खा लेते थे बस, उसमें भी केले के जो फूल होते हैं वो प्राय मेन होते थे उनके। सोचिए पूरा महीना केले के फूल उबाल करके, है ना, और हम कर सकते हैं इसे, कितना मुश्किल है। अगर हम इमिटेट भी करने लगे 2-4 दिन तो बाबा जी बन के घूमेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, थोड़ा झुक करके चलेंगे, हरे कृष्णा बस, अब और मत बातें मत करो मेरे से, मेरी स्थिति थोड़ा सिद्ध है, हरे कृष्ण। लेकिन जैसे ही हमने आगा केक महाप्रसाद तो सारा का सारा सब समाप्त हो जाएगा भाव ना, है ना, रह नहीं पाएंगे ऐसे। तो इसलिए ये जब तक निताई की नाम इनोचीरे वाला स्थिति ना आए ना, कैसा नाम दे दिया है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बाबा जी महाराज किसी में भेदभाव नहीं करते थे, धाम के प्रति तो ऐसा अनुराग था बाबा जी का कि एक बार धाम में वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और एक कुत्ते के कुछ बच्चे थे पिल्ले, वो आकर के बाबा जी की थाली में रोटी खाने लग गए। सोचिए, और वो रोटी तोड़ रहे हैं, बाबा जी के हाथ से खा रहे हैं, फिर बाबा जी उनके हाथ से निकाल करके खा रहे हैं। तो ये देख करके बिहारी दास बाबा जी महाराज को लगा, अरे बाबा क्या कर रहे हैं, इनका महाप्रसाद ये कुत्ते खा रहे हैं, पिल्ले खा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये मतलब पिल्लों को आज मैं खदेड़ कर बाहर निकालूंगा, बांध दिया, रस्सियां बांध दी पिल्लों के पैर में, खींचने के वो भी चिल्ला रहे हैं ची 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 करके, और वो खींच रहे हैं उनको बाहर। बाबा जी महाराज को बहुत दुख हुआ, बोले कि वो आंखें तो बंद है, कह रहे वो कहां गए मेरे पिल्ले, कहां गए मेरे धामवासी, कहां गए। तो कहा धामवासी, कैसे धामवासी है, कहा कि देखो एक धाम में ना 3 चीजों के प्रति अनुराग होना चाहिए तब धाम अपराध नहीं बनता। पहला, धाम की रज के प्रति बहुत ज्यादा हमको ना कृतज्ञ होना चाहिए कि उस रज ने हमको प्रवेश करने का मौका दिया, धाम की रज के प्रति। दूसरा, हमको धाम के धामी जो है ना भगवान, जो उसके मेन अधिष्ठात्री देव हैं, उनके प्रति बहुत समर्पित रहना चाहिए, उनके प्रणाम मंत्र, उनके कीर्तन, उनका ग्लोरिफिकेशन। जगन्नाथपुरी जाएं, जगन्नाथ अष्टकम गाएं, गौरांग महाप्रभु के धाम मायापुर जाएं, महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान करें, वृंदावन जाएं, श्याम सुंदर का गुणगान करें। तो गुणगान मतलब भजन कीर्तन आदि कथा में उनका कीर्तन कथा होना चाहिए, तभी सही माने में हमने धामी की इंपॉर्टेंस समझी। धाम, धामी और धामवासी, धामवासियों के प्रति भी बड़ा ही कृतज्ञ होना चाहिए कि धामवासी के प्रति कोई अपराध ना हो। तो बाबा जी कहते हैं, अरे बिहारी दास तुम जानते हो ये कौन है, ये धामवासी है, इन पिल्लों को तुम खींच रहे हो, दूर कर रहे हो। कहा बाबा जी ये इनके मुंह से थूक गिर रहा है आपके प्रसाद में, आप महाप्रसाद ले रहे हैं। कहा ये महाप्रसाद है क्योंकि ये कुछ कुत्ते जितने भी पिल्ले हैं ना, ये सारा दिन क्या करते हैं? नवदीप की रज में लौटते हैं। इनके कण में, इनके मुंह के अंदर सब क्या है? मायापुर की, भगवान महाप्रभु की चरण रज है। तो मैं ऐसा लगता है कि ये जो है ये कुत्ते की योनि में, ये धामवासी है, ये वो बहुत उच्च योनि में, देखो चतुर्भुज रूप में है। वैसे भी वो तो चार हाथ वाली होते हैं ना कुत्ते, तो ये चतुर्भुज रूप में है, उनको आसानी से हम समझ सकते हैं चतुर्भुज रूप में। लेकिन भगवान के वो भक्त वर्णन कर रहे हैं कि धाम में एक एक जानवर के प्रति भी आपको क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम जाते हैं ना वृंदावन आदि में, देखते हैं हम कचौड़ियां खा रहे हैं और कुत्ता आकर के देख रहा है ऐसे करके ना, और कुत्ते को ऐसे लात मार देते हैं, तो कुत्ता सोचता है कुत्ता मैं हूं, हरकत है ये करते हैं, है ना। चेहरा मतलब वो धाम में बैठा है, महाप्रसाद खा रहा है, हर टाइम कीर्तन सुन रहा है, रज में सोता है, उसके प्रति भी हमारा अनुराग, हमारा कोई समर्पण नहीं है। सोचिए आप क्या स्थिति है। तो ऐसे बाबा जी महाराज बहुत ही ज्यादा विभिन्न विभूति, जिसे कहते हैं शिरोमणि है। और बताते हैं कि व्रज में एक बार बाबा जी महाराज जब वास कर रहे थे, तो एक भंगी जो था ना, मतलब जिसे शूद्र जाति कहते हैं, वैसे तो धाम में कोई शूद्र नहीं होता है, तो ही बाबा जी ने वही धामवासी के प्रति अपना सरेंडर शरणागति दिखाया। बाबा जी कहते लाओ 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 रोटी दे दो मुझको, मधुकरी करने निकला हूं मैं, मुझे भूख लगी है। तो बंगी कहते मैं तो छोटी जाति का हूं, का जाति वाति कोई नहीं होती है, सब लोग हरि के जन होते हैं, है ना। हरिजन मतलब छोटी जाति, हरिजन मतलब हरि के जन, है ना। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजी तो हरि को ही, जो हर को भजन करता है हरि का है। तुम भजन करते हो, कीर्तन में आते हो, दे दो अपनी रोटी। तो उनकी रोटी ली, खा ली, सभी ब्राह्मणों ने उनको बायकॉट कर दिया। बाबा जी महाराज ने क्या कर दिया, ये ना मतलब बाबा जी आप क्या कर रहे हो, आप सार्वभौम वैष्णव हो, यद यद आचराती श्रेष्ठा तत्त एव इतरो जना सायत प्रमाणात कुरुतो लोकस्तत अनुवर्तते। आप जो करेंगे बाबा जी सब आपका अनुगमन करेंगे। क्या कर रहे हैं बाबा जी? बाबा जी बोले ठीक है, जो भी है ये ना रोटी जो है ना, ये रज में बकाई गई है, इसके अंदर लकड़ी लगी है ना, वो रज रज में उगने वाले पेड़ है, और जो ये भंगी है ना, ये झाड़ू लगाता है रात दिन, किसकी? व्रज रज की सेवा करता है, जिस सेवा को स्वयं श्यामानंद प्रभु ने भगवान की सेवा करकर कृपा प्राप्त करी, राधा रानी ने स्वयं अपनी पायल का निशान उनके मस्तक पर बना दिया। क्यों? क्योंकि वो झाड़ू सेवा करते थे। हर एक वैष्णव को जब भी धाम में जाए, धाम में गंदगी करने की बजाय धाम को सफाई करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं अपना प्लास्टिक से प्रसाद पाते, थर्माकोल पैक्ड, और फिर फेंक देते हैं। तो सोचना चाहिए फेंकने से पहले मैं कहां फेंक रहा हूं, ये जिस भूमि है ये चिंतामणि धाम है, ये कोई साधारण दिल्ली शहर नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है किसी व्यक्ति की, तो धाम अपराधी है। चाहे वो कितना भी भजन कर रहा हो, हरे कृष्ण मंत्र क्या हो, कीर्तन क्या हो, कुछ भी क्या हो, तो उसका कभी भजन पकेगा नहीं, क्योंकि वो धाम का अपराधी बन जाएगा। तो इस तरह से बाबा जी कहते हैं ये कौन है, ये झाड़ू लगाता है, धूल उड़ती है, धूल में सना रहता है, रज इसके कण कण इसके शरीर में बस रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की रोटी खाना क्या अपराध है? तो फिर सबको समझ में आया बाबा जी की स्थिति कैसी है, बहुत गंभीर स्थिति में है वो। सबको पंडिता नाम समदर्शिना, ऐसी स्थिति आ गई है, सबको समान दृश्य से देख पाते हैं। बाबा जी महाराज एक बार कंधे पर बैठ करके जा रहे थे बिहारी दास बाबा जी महाराज के साथ में। तो बिहारी दास जब जा रहे थे, तो ऐसे निकलते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो एक भक्त आया और कहता है बाबा जी मैं आपको कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। कहा ठीक है दे दो। तो उन्होंने अपनी जेब से एक रुपया, इतने समय पहले तो एक रुपये की कीमत थी, एक रुपया निकाल करके बाबा जी को कहा ये आपके लिए डोनेशन, सेवा में लगाइएगा कुछ अपनी। बाबा जी ने ले लिया, उसको आशीर्वाद दिया, चल दिए। दो तीन मील आगे जाने के बाद में बाबा जी को लगा कि नहीं नहीं ये ना, जब से एक रुपया मेरे पास आया है ना, जब मैं मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि एक रुपया गिर ना जाए, एक रुपया गिर ना जाए, इसको कहाँ यूज करूंगा, कहाँ यूज करूंगा। अरे वापिस चलो। बिहारी महाराज बोले अरे वापिस कहाँ, बोले चलो चलो। लेकर के आए, वो उसी वैष्णव के पास रुके जो धनाढ्य व्यक्ति था, उससे बोले कि अरे भाई ये लो तुम्हारा एक रुपया वापिस। कहा बाबा जी तो मैंने डोनेशन दिया, आप डोनेशन रिटर्न कर रहे, ठाकुर की सेवा में लगाई, गौरांग महाप्रभु की सेवा। कहा वो सेवा में लगा लेंगे हम, लेकिन है ना अभी हमारा भजन खराब हो गया। कहा कैसे? कहा पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, एक रुपया लेकर के मैं तीन मील नहीं चल पाया, तुम हजारों रुपए लेकर के पता नहीं रात दिन कैसे भजन करते हो, कहते हो मैं भजन करता हूँ, तुम जानो तुम्हारा भगवान जाने, मुझे तो समझ नहीं आता कि एक रुपया लेकर भी भजन कैसे बनेगा, है ना, बहुत मुश्किल लगा। उन्होंने कहा कि ये पदार्थ ना जैसे जीवन में आता है ना, सब कुछ व्यक्ति का दिमाग से निकल जाता है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। वो हमेशा सोचता रहता है कैसे प्रोटेक्ट करूं अपने पैसे को, कहां रखूं, कोई चोरी ना कर ले, मुझ पर इंजाम ना आ जाए। इवन भक्त बनने के बाद में भी ना हम बहुत ज्यादा पैसे को लेकर के हमारा थॉट ऐसा रहता है। लक्ष्मी है ठाकुर जी की सेवा में लगनी, लेकिन वो जो सेवा करते वक्त भाव उत्पन्न होता है लक्ष्मी के स्पर्श मात्र से, वो भजन को थोड़ा कच्चा करता है। इसलिए एक भक्त को जो ऐसी सेवाओं में, उनको तो बहुत भजन पक्का करना पड़ेगा अपना चाहिए, वरना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं ना, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो ना विद्यते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, यो जी है ना, भोग और ऐश्वर्य व्यक्ति को भक्ति में लगने नहीं देते हैं, बार बार खींचते हैं, हाँ उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से बाबा जी एक बार ऋषिकेश में थे और सुबह 3 बजे उठ करके जप करने बैठ जाते थे। और कब तक जप करते थे? हम लोग करते 3 बजे उठकर, अगर जप करेंगे ना तो 5 बजे तक कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 7-7:30 तक कर लेंगे। वो करते थे शाम को 7 बजे तक गौर आरती तक जप करते थे कॉन्टिन्यूसली मौन व्रत, और उसके बाद में फिर प्रसाद पाते थे और फिर जप करना प्रारंभ करते थे। तो कई बार लोग होते थे, बाबा जी आपसे कुछ कहना है, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, प्रसाद पा रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, प्रसाद पाने का फिर जप माला उठा लिया, हरे कृष्ण, बोलते ही नहीं थे, पूरा मौन व्रत धारण के 1 महीना निकल गया। बोले बाबा जी बहुत जरूरी बात करनी है, ऐसे करते थे हर रोज। कहा तुम्हारी बात इंतजार कर सकती है, लेकिन भगवान का हरि नाम इंतजार नहीं कर सकता। और हम कैसे हैं, हरि नाम को इंतजार करा करके सारी दुनिया की बातें करते हैं, क्योंकि हमको लगता है दुनिया की बात वेट नहीं कर सकती है, हरि नाम वेट कर सकता है। ये तो ऐसे हो गया जैसे मैंने आपको फोन मिलाया, है ना, भगवान का हरि नाम भगवान से जोड़ने का काम करता है। तो मैंने फोन मिलाया, हरे कृष्णा प्रभु जी, भले हाँ हरे कृष्णा बात चालू हुई, और उसके बाद में एक काम करूँ ना, पानी की टंकी भर दो जरा, हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, वो एक काम करना जरा प्रसादम अरेंज कर दो, आज ना एक सीनियर डिवोटी आने वाले, हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी एक काम। अब जो सामने वाला फोन पे सुनने वाला उसको कैसा लगेगा? वो कहेगा मैं जीवन भर के लिए एंगेज कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, इसका नंबर ये मिलाएगा लेकिन कभी मुझ तक नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण जिस दिन नाराज हो गए ना, वो तो महावदन्याय है, वो तो वात्सल्य शिरोमणि है, इसलिए अभी तक चल रही है हमारी दुकानदारी। लेकिन जिस दिन भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा फोन इंगेज परमानेंट ब्लॉक, उसके बाद क्या होगा? फिर हरि नाम लेंगे, लेकिन हम हरि नाम नहीं लेंगे, हम शब्द रूप में हरि नाम लेंगे, लेकिन असलियत में नाम निकलेगा ही नहीं। नाम तो कहे पर नाम नहीं आए, है ना, नाम तो बोलते हैं लेकिन नाम नहीं आता, क्योंकि सच्चा नाम तो वो है जो प्रीति पूर्वकम भगवान का भजन किया जाए, सेवा भाव से भगवान के प्रार्थना करते हुए। तो ऐसा बाबा जी महाराज 1 महीने का मौन व्रत धारण किए ऋषिकेश में, और उसके बाद में एक बार इस बात वर्णन किए, बात तब भी नहीं सुने, और उसके बाद फिर 3 महीने तक फिर दोबारा से यही प्रक्रिया रखे। हरि नाम के प्रति इतना उनका सरेंडर था, इतना ज्यादा कि एक बार पेशाई कदम खंडी नामक स्थान में कच्चा कुआ हुआ करता था, मतलब बंगाल से और उड़ीसा के बॉर्डर पर जब आगे चले, तो वहां पर बाबा जी महाराज एक कुएं के पास बैठ गए और बिहारी दास बाबा जी महाराज को बोले आज हरि नाम लेंगे जप करेंगे। बोले आज बाबा जी दसवीं है, एकादशी का कुछ अरेंजमेंट कर लूं प्रसाद वगैरह। कहा तुम प्रसाद खाने आए हो यहाँ पे कि जप करने के लिए आए हो? कहा बाबा जी फिर भी एकादशी है, आप तो सार्वभौम वैष्णव है लेकिन मैं तो तुच्छ वैष्णव हूँ, मुझे तो भूख लगती है। बाबा जी ने कहा ठीक है तुम एक काम करो गुरु की शरणागत रहो। कहा कि जी बिल्कुल गुरु महाराज आपके साथ ही हूँ। कहा ठीक है जो मैं कहूँ वो करना। कहा क्या? बोले पहले एकादशी रखो पूरी, उसके बाद द्वादशी पारायण करेंगे ना तो प्रसाद अपने आप आएगा। अरे बाबा जी अपने आप कैसे आ जाएगा, घर जाना पड़ेगा, 4 लोगों को बोलेंगे बाबा जी की यहाँ पे समाधि लगी है, जप चल रहा है, आइए थोड़ा प्रसाद दे दीजिए तब आएंगे। बोले कि तुम कृष्ण का नाम लो, कृष्ण अपने आप सब अरेंजमेंट करते हैं। कहा ऐसा कैसे हो गया? कहा तुम जानते नहीं हो योगक्षेमम वहाम्यम, जो नहीं है वो मैं तुमको प्रदान करूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। कहा जी बाबा जी महाराज, बड़ा ये बोलना तो सरल लगता है लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है ना, हम लोग भी बोलते लेक्चर देके आ जाते हैं अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन इसको स्वीकार करके अपने जीवन में अपनाना बहुत मुश्किल बहुत कठिन। बाबा जी महाराज ने इसे कहा तुम जप करो, तो वो बेचारे बैठे बैठे जप करते रहे। वो बाबा जी का तो अनुराग था नाम के प्रति, उनको तो 100 माला कर लो 200 माला कर लो लगता था एक और, जैसे हम गुलाब जामुन के प्रति अनुराग है ना, 2 खाने के बाद में मन रहता है यार पेट तो भर गया लेकिन है ना मन नहीं भरा, ऐसे ही बाबा जी महाराज का अनुराग हरि नाम के प्रति था। जितनी माला कर लो उसके बाद लगता था थोड़ा सा और एक माला कर लो रुक जाओ जरा है, और दूसरा जिसका जिसको कड़वा लगता है हरि नाम, जिसको लगता है ड्यूटी बाउंड हूं, जिसको लगता है मुझे तो बोला गया करने के लिए, उस व्यक्ति के लिए तो बहुत ऐसा कड़वा लगता है, जल्दी जल्दी हो 16 माला पूरी हो उसके बाद इसको टांग दो, दूसरे दिन ही ढूंढूंगा इसको, घर वालों को बोलूंगा यहाँ टंगी हुई है ढूंढ के दे देना मेरी, है ना, फिर निकल जाऊं अपने आराम से सेवा में। जितनी जल्दी हो सकता है अपना हाथ हम खींचना चाहते हैं, इसलिए कई बार होता है नाम जप करते वक्त ना व्यक्ति जप माला के अंदर वाली माला से ज्यादा बाहर वाली पे ज्यादा ध्यान देता है, उसका फोकस रहता है कितनी बाकी रह गई है ना, है ना। तो इस प्रकार से हमें बाबा जी महाराज से आज प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा हरिनाम के प्रति जो है ना शरणागति स्वाद उत्पन्न हो जाए। बहुत मुश्किल है, आप लोग सोचते हैं कि हरिनाम अगर ध्यान पूर्वक करेंगे ना, प्रभुपाद जी ने कहा है ना वो अंत समय में आएंगे सबको भगवत धाम ले जाएंगे, लेकिन आपका अनुराग ही नहीं होगा तो क्या हरि इच्छा ऐसी होगी आपको देने आने देंगे? क्योंकि जो गोलोक धाम है या भगवान की सेवाएं हैं जिसमें आप नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होना चाहते हैं, वहां पर क्या सेवा है? जिसको देखो क्या बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे दिन यही बोल रहे हैं। हाँ, फिर 2 मिनट रुकते हैं फिर कृष्ण का गुणगान गाने लग जाते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं फिर कृष्ण का गुणगान, तो रुकते क्या है, भगवान की सेवा के लिए रुकते हैं, उसमें भी मन में चल रहा होता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। अब वो उनके यहाँ का क्वालिफिकेशन है, गोलोक धाम नित्य लीला में जाने का क्वालिफिकेशन है हरे नाम से प्रीति। अब जिसको नहीं हो चाहे किसी भी चीज से प्रीति हो संसार में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर एक चॉकलेट की भी प्रीति रह गई ना इस संसार में, हरि नाम के प्रति प्रीति है लेकिन चॉकलेट के प्रति भी प्रीति है कि यार ना मैं एक बार चॉकलेट खा लेता ना महाप्रसाद वाला केक तो फिर मेरा हरि नाम में आराम से, देखो भूखे तो भजन होता नहीं है, लेकिन ये सच्चाई नहीं, सिद्धांत ये नहीं है। आप पेट भरने में लगे रहोगे तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम होगा, नहीं काम चलेगा नहीं। क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद के रूप में लिया जाना चाहिए, पदार्थ के रूप में नहीं। व्यक्ति ना कई बार से बोलता है चावल प्रसाद दे देना प्रभु जी चावल प्रसाद, वो थोड़ी देर लगा देता है ना आने में, हरे बोल चावल चावल प्रभु चावल, ऐसे प्रसाद भूल जाता है ना। तो क्या है ये पदार्थ भूति है। और जब देने आते ना डिस्ट्रीब्यूशन के समय महाप्रसाद की थाली में करेला डाले ना कोई, आप कहने नहीं प्रभु मैं करेला नहीं खाता हूँ, वो करेला थोड़ी है महाप्रसाद है, लेकिन वो क्या कहते ये थोड़ा सा दे देना, मैं ना महाप्रसाद थोड़ा कमी रहता हूँ अपने में यार, इतना ताकत नहीं है डाइजेस्ट कर सके, नहीं प्रभु नहीं हरी बहुत हरे कृष्ण तो बोल रहा है वही हलवा दे रहा हो तो है ना, हरे कृष्ण प्रभु जी महाप्रसाद लेंगे आपका तो डाइजेशन ठीक नहीं रहता थोड़ा, नहीं नहीं दे दो अभी ठीक है आजकल थोड़ा। तो ये क्या है, ये प्रसाद बुद्धि है, ये पदार्थ बुद्धि है। इसी के कारण आप देखो कि इतने बड़े आचार्य रामानुजाचार्य का महाप्रसाद पाते ही मछली चतुर्भुज रूप लेकर के भगवत धाम चले। हम खा चुके हैं प्रभु जी बोलते हैं टनों प्रसाद खा चुके हैं फिर भी हमारे में परिवर्तन नहीं है, इसका कारण क्या है, पदार्थ बुद्धि है। प्रसाद रूपी बुद्धि नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं प्रसाद खा रहे हैं, है ना। जब ऐसी बुद्धि आ जाएगी तब हमारे जीवन में हो सकता है नाम के प्रति प्रीति है, जो मिल जाए रूखा सूखा। बाबा जी से देखो ना बंगी की रोटी खा ली पिल्लों के साथ बैठ के खा लिया, जमीन में गिराओ प्रसाद पाया, ठीक है चलो हरि नाम लेना जरूरी, ये सब तो शरीर के अंदर आत्मा जुड़ी रहे तो बस इसके लिए चलाने के लिए खाना, ऐसी स्थिति बाबा जी महाराज वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से एक दसवीं निकल गई जप करते करते, एकादशी निकल गई जप करते करते, द्वादशी आ गई, बाबा जी महाराज तो अपने हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बाबा जी महाराज जप कर रहे थे। अब देखा बिहारी दास बाबा जी महाराज जब साइड में रख करके पेट को पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दबा रहे शायद फूक बंद हो जाए ऐसे करके, तो उन्होंने कहा बिहारी दास क्यों इतना उदास हो, तुम ताली बजाओ करताल, है ना, ऐसे कितनी बार बजाने को बोला, बोले 3 बार ताली बजाओ पर देखो महाप्रसाद आएगा। अब ये चमत्कार है, बाबा जी महाराज सोच रहे थे ताली बजाऊंगा ये तो ऐसे बोल दिए इनको तो फर्क नहीं पड़ता कुछ नहीं आया, कहेंगे ठाकुर जी की इच्छा हरी इच्छा कह के फिर जप में लग जाएंगे मैं तो भूखा मर जाऊंगा। लेकिन बिहारी दास बाबा जी महाराज जैसी 3 बार ताली बजाई चमत्कारी घटना होनी शुरू हो गई, वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था उसने ताली की आवाज सुनी और दौड़ करके आया, कहता है आप तो सिद्ध बाबा जी हैं, क्योंकि जगन्नाथ बाबा जी महाराज का एक नाम था सिद्ध क्योंकि उन्होंने हरि नाम को सिद्ध किया था, तो इसलिए सिद्ध जगन्नाथ बाबा जी महाराज बैठे हैं दर्शन करने के लिए वो आ गए। और आने के बाद बोले अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं आप लोगों ने कुछ प्रसाद लिया, तो बाबा जी जगन्नाथ बाबा जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं इन्होंने अभी तक नहीं लिया है ना, तो इनके लिए जल्दी से प्रसाद ले आइए। तो फिर वो दौड़ कर गए और अविश्वसनीय घटना 100 किलो दूध वहां पर इकट्ठा हुआ जिसकी खीर बनी और फिर बाबा जी महाराज ने तो पाया और पूरे गांव ने बाबा जी का महाप्रसाद ग्रहण किया सिर्फ क्या करने से हरि नाम। लेकिन हम भागते दौड़ते ये कर ले ऐसा कर ले वैसा कर ले, क्यों? क्योंकि हरि नाम नहीं कर पा रहे, इसलिए बहुत भारी प्रयास बहुत है। अंदर प्रयास जितना अधिक होगा उतना भारी उसका रिजल्ट निकल करके आता है। कुछ ऐसे जमींदार थे जिनका नाम था नाथ राय, गोपी मोहन राय और जानकी नाथ राय। ये तीनों राय थे, है ना। राय हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है ना, हर व्यक्ति राय बोल देता है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण टाइटल है राय, है ना। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में हो तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो राय दिया बगैर अपने घर चला जाए, है ना। सारे के सारे लोग मेडिकल प्रोफेशन तो अपने में बेस्ट है और स्पिरिचुअल प्रोफेशन में पूरे बेस्ट है। जरूरत नहीं भागवत पढ़ने, गीता पढ़ने की, बस क्या है सब राय देना चाहते हैं। तो उन्हीं के ये शिरोमणि थे नाथ राय, गोपी मोहन राय और जानकी नाथ राय। ये तीनों राय जगन्नाथ बाबा जी महाराज के पास आए, जमींदार थे, भाग्यकुल ग्राम के जमींदार। तीनों के तीनों आए और कहते, बाबा जी हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमने सुना है आपने सिद्धि प्राप्त करी है। बाबा जी कहते, नहीं नहीं ये सब तो खाली प्रपंच है, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं, मैंने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की है, मैं तो साधारण जीव हूं, भगवान का नाम जप करता हूं। कहा, नहीं नहीं कोई तो चमत्कार दिखाइए, कोई तो चमत्कार दिखाइए बाबा जी, कोई तो चमत्कार दिखाइए। बहुत देर तक ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे। बाबा जी ने एक वहां से लाठी उठाई और जोर जोर से जमीन पर पटकना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही जोर जोर से पटका ना तो ये तीनों घबरा गए कि हमारी पिटाई होने वाली लगता है। तो है ना, बाबा जी पूछते हैं उनसे, बाबा जी से, क्या हुआ बाबा जी आप ये क्यों कर रहे हैं, हमने कोई गलती कर दी? बाबा जी कहते, नहीं नहीं बैठे कहां थे? मायापुर बंगाल भाग्यकुल के पास ग्राम में। और कहते हैं वहां राधा कुंड पे वृंदावन में ना लोकनाथ गोस्वामी की समाधि कुटीर के अंदर क्या आ गई है, कुछ बकरी आ गई है और तुलसी के पौधे खाने का प्रयास कर रही है, तो मैं उन बकरियों को भगा रहा था। तो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि बाबा जी ने कुछ तो चमत्कार दिखाया, अब इसकी कितनी सिद्धि है इसको चेक करो। तो ये जवाबी टेलीग्राम होता था कि टेलीग्राम में लिखो प्लीज रिप्लाई, तो वो तुरंत फिर रिप्लाई करेंगे। इमरजेंसी एक शब्द के अंदर लिखते थे, ऐसा आपातकालीन परिस्थिति, मृत्यु, कुछ भी लिख देते थे, तो उसमें जवाब आता था हाँ या ना। तो ऐसे जवाबी टेलीग्राम लिखा कि आप जल्दी से बताइए हुआ क्या। तो उन्होंने वहां पर जो लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज की राधा कुंड पे समाधि थी उसके बाबा जी जो सेवा करते थे, उन्होंने जब ये टेलीग्राम देखा और लिखा था कि सिद्ध जगन्नाथ बाबा जी महाराज पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया हाँ कल कुटिया के अंदर उस घर के अंदर एक बकरी आ गई और उसने सारे पत्तों को खा लिया तुलसी जी के, और साथ में उसके झाड़ी के अंदर उसके बाल फंस गए थे और वो बाल आज भी पड़े हुए हैं। तो उन्होंने जवाब में लिखकर 20 दिन बाद वो जवाब पहुंचा और फिर ये तीनों के तीनों हैरान रह गए। तो कि सुनकर के बाबा जी बैठे कहाँ थे? मायापुर। और उन्होंने दर्शन किसका किया? राधा कुंड का। राधा कुंड में बैठ के मायापुर दिखता था, मायापुर बैठ के राधा। हमें ना मायापुर में मायापुर दिखता है ना राधा कुंड में राधा कुंड दिखता है। सोचिए हमारी स्थिति कैसी है। तो ऐसी स्थिति में बाबा जी कहते हैं, उनके जब भक्तों ने पूछा बाबा आपको क्या जरूरत थी ऐसा चर्चा करने की, सिद्ध दिखाने की, कहा ये कलयुग के लोग हैं, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, ये हरिनाम के प्रति शरणागत तभी होंगे जब मैं इनको चमत्कार देखूंगा। इसलिए बाबा जी ने एक चमत्कार दिखा दिया, कहा ले ले बेटा एक चमत्कार देख ले, है ना। बाबा जी महाराज रोज चेतन चरितामृत सुनने के बड़े आदि थे। तो उन्होंने एक दिन कहा बिहारी दास बाबा जी से कि तुम मेरे लिए चेतन चरितामृत बंगला भाषा का पढ़ते क्यों नहीं हो, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से हमें अंग्रेजी भाषा में मिला और फिर उनके भक्तों की कृपा से हिंदी भाषा में मिला, परंतु पहले वो बंगला भाषा में था। तो जो बंगला भाषा का था तो उन्होंने बिहारी दास से कहा जाओ चेतन चरितामृत खरीद लाओ। तो ले आए, लाके बोले पढ़ो। कहा बाबा जी मुझे बंगला नहीं हूं, मैं बंगला नहीं पढ़ना जानता हूं, मैं बंगला नहीं जानता हूं। कहा कि अच्छा तुम्हें बंगला नहीं आती? कहा कि ऐसा क्यों, तुम चलो बंगला पढ़ो तुम्हें आ जाएगी। कहा आती नहीं तो पढ़ू कैसे? कहा अच्छा चेतन चरितामृत को मस्तक से लगाओ अपने और इसको देखते रहो, चेतन चरितामृत को ध्यान से, ये सबसे मीठा ग्रंथ है संसार का, गुलाब जामुन से भी अधिक, है ना। गुलाब जामुन इसलिए बोला गया क्योंकि हम समझ सकते हैं, हमारी उदरता की सोच है, अन्यथा हजारों करोड़ों गुलाब जामुन से भी अधिक मीठा है। कहा ये बहुत अधिक मीठा ग्रंथ है, इसको कानों से श्रवण करने से हमारे जीवन में हृदय में मिठास आती है, जवान में मिठास आती है। कहा इसके पयारों को रोज 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 बोलना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने वर्णन किया। और एक अविस्मरणीय घटना वहां पर हो गई। क्या हुआ? बाबा बिहारी दास बाबा जी ने जैसी मस्तक से लगाया और उसको देखने लगे, कहा बस टकटकी लगा के देखते रहो, धीरे धीरे अक्षर तुम्हारी आंखों में प्रवेश करेंगे और तुम्हारी जिह्वा से बाहर निकलेंगे। और फिर वही हुआ, उन्होंने ऐसे आंखों में ऐसे देखते रहे और फिर बोलने लगे, प्रेम आवेशे उठे पड़े नाचे हसे गाए जगन्नाथ दर्शन महासुख पाए। प्रेम आवेशे उठे पड़े नाचे हसे गाए जगन्नाथ दर्शन महासुख पाए। बोले लग गए। वो हैरान थे बिहारी दास की मैं बांग्ला ना जानने वाला व्यक्ति देखते ही चंदन चरण मेरे मुंह से प्यार निकल रहे। तो बाबा जी महाराज कहते थे इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। गुरु की सेवा तुमने करी मुझे सिर पर लेकर के चलते हो इसलिए मैंने क्या किया तुम्हारे दिव्य ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर दिया। बाबा जी महाराज जब भागलपुर से गुजर रहे थे तो बिहारी दास उनको टोकरी में लेकर जा रहे थे और उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि बाबा जी महाराज की टोकरी घूमी और उल्टा चलने लगे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ हम तो मायापुर से वृंदावन जा रहे थे अभी बिहार आया भागलपुर तुम वापिस जा रहे हो। तो बिहारी दास कहते बाबा जी सामने शेर है शेर। कहा शेर तो घबराने की क्या बात है। कहा बाबा जी शेर शेर शेर। तो बाबा जी कहते हैं अरे बिहारी दास शेर नहीं है महाप्रभु का चेला है महाप्रभु का चेला है वो। हाँ तुम देखो अभी वो चला जाएगा उसको सिर्फ प्यार से हरे कृष्णा कहो। अब बिहारी दास सोच रहे थे कहीं मैंने हरे कृष्णा का उसका अटेंशन मेरी तरफ आ गया और जंप किया क्या होगा। लेकिन उन्होंने बाबा जी बात मानी गुरु आदेश गुरु अवज्ञा नहीं की आदेश की। बाबा जी महाराज की बात सुन के कहते हैं हरे कृष्णा घबराते हुए। तो है ना शेर उठा उठ करके चलकर वापस रास्ते से चला गया। तो उसने पूछा बाबा जी यहाँ क्यों बैठा था। कहा मेरे से स्वप्न में उसकी चर्चा हुई थी वो आया था हरि नाम भक्तों को दर्शन करने के लिए कि जब से चेतन महापुरुष रास्ते को छोड़ करके गए हैं कोई बढ़िया हरि नाम भक्ति नहीं मिला आज बड़े दिनों बाद कोई हरि नाम लेने वाले भक्त जा रहे तो इसलिए वो दर्शन करने आया था। सोचिए ऐसी स्थिति हमारे सामने कुत्ता आ जाए और हम माला लेके जा रहे हो तो हम क्या करेंगे। हाँ रोमांच कंपराशु तरंग भाजो कांपते भागते हैं। सोचिए क्योंकि हम स्थिति नाम के रूप में दिख पा रहे। इसे प्रभुपाद जी के साथ भी हुआ। एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करके भागवतम क्लास देने के लिए आ रहे थे तो पीछे से सभी भक्त आ रहे थे और एक कुत्ता था जो जोर जोर से भौंक रहा था। तो है ना प्रभुपाद जी उसको कहते हैं हरे कृष्णा। तो है ना वो कहते हैं चुप हो गया इधर पीछे से भक्त आए तो उनका भौंकने लगा तो सारे भक्त बोलते हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे और तेज तेज भौंकने लगा। सारे डर कर ऐसे साइड से होकर भाग गया। प्रभुपाद जी क्लास में बैठ गए क्लास सुना क्लास के बाद प्रभुपाद बोले एनी क्वेश्चंस। कहा प्रभुपाद आज तो कमाल ही हुआ आपने कुत्ते को एक बार बोला हरे कृष्णा वो चुप हो गया लेकिन हमने कई बार पूरा पूरा मंत्र बोल दिया तो वो चुप नहीं हुआ। प्रभुपाद जी बोले दैट इज द डिफरेंस मैंने उसको आत्मा स्वरूप में हरे कृष्णा बोला कि वो भगवान का एक अंश है जो कि इस कुत्ते की योनि में फंसा हुआ है लेकिन आप लोगों ने उसको कुत्ता समझकर हरे कृष्णा बोला इसलिए तो वो समझ गया तो मुझे कुत्ता मानते हो वाह वाह वाह। तो ऐसे कभी हमें शेर मिल जाए तो हमें बाबा जी महाराज को कॉपी नहीं करना चाहिए हरे कृष्णा बोले पंडिता नाम समदर्शिना समान दर्शिना हमारी 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 वो स्थिति नहीं है तो सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे ही बाबा जी महाराज जो थे उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनके प्रति बहुत शरणागत थे। भक्ति विनोद ठाकुर जानना चाहते थे कि निमाई पंडित भगवान चेतन महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है। पूरी पूरी रात अपने वहां पर सुखद कुंज में बैठकर जप किया करते थे छत पर और उनको दूर से एक लाल रंग की रोशनी दिखाई देती थी कि गंगा के उस पार पूर्वी दिशा में एक क्या स्थान है जहां निमाई का जन्म हुआ है निमाई स्थान जन्म स्थान। लेकिन वहां के लोगों से पूछते थे तो सारे बोलते थे नहीं नहीं अरे बाबा निमाई का जन्म तो गंगा के किनारे हुआ था। तो सब लोग सोचते थे हुआ तो गंगा के किनारे था लेकिन यहाँ तो गंगा गंगा दूर भेजती है। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी ज्योग्राफी सब पढ़ रहे थे क्योंकि मजिस्ट्रेट थे बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे पुराने डॉक्यूमेंट्स देख देख कर पढ़ रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तो एक दिन वो वहां पर जाते हैं जिस स्थान पर उनको लाल रोशनी रोज दिखती थी जप करते वक्त। तो वहां जाकर के वो देखते हैं कि वो स्थान मुसलमानों के द्वारा मोमडंस के द्वारा खरीदा गया जमीन है लेकिन वहां तुलसी के पौधे उग रहे हैं और एक स्पेशल प्रकार की खुशबू का वहां पर एहसास हो रहा है। तो उन्होंने कहा लगता तो मुझे ये दिव्य स्थान चैतन्य महाप्रभु का क्योंकि मुस्लिम लोग सारे तुलसी का वन तोड़ देते हैं लेकिन वो अभी यहाँ है। तो बहुत बड़ा वृक्ष था नीम का उसके चारों तरफ तुलसी 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 धारी तुलसी थी। तो उन्होंने कहा है तो यही लेकिन इसकी इसकी पुष्टि कौन करेगा कि ये सच में निमाई जन्म स्थान है। तो उन्होंने पढ़ा कि गंगा पहले उसी स्थान से बहती थी लेकिन अभी अपना रिवर बेड बदल लिया दूसरे स्थान से बहने लगी है। तो फिर उन्होंने जाकर के बाबा जी महाराज से कहा, बाबा जी आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, मैं चाहता हूं कि आप पुष्टि करें निमाई जन्म स्थान की। बाबा जी ने कहा कि ठीक है तुम मुझे ले चलो। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर, बिहारी दास बाबा जी और जगन्नाथ बाबा जी महाराज जाते हैं। बाबा जी महाराज टोकरी में बैठ करके गए और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बाबा जी आपका क्या कहना है इस जमीन के बारे में। बाबा जी टोकरी में से कूद पड़े और 4 फीट की जगह कहते 7 फीट ऊंचा जंप किया और बोलते हैं, यही तो निमाई जन्म स्थान है, यही तो निमाई जन्म स्थान है, यही निमाई का जन्म स्थान है। और फिर उस मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लेप करने लगे तो भक्ति विनोद ठाकुर जान गए कि बाबा जी महाराज ने स्थान को क्या बनाया है, इस बात को प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर चेतन महाप्रभु का जन्म हुआ है। और वो कहते थे कि आपके लिए सदा एक नाम जप बहुत किया करते थे, हरि नाम से भी ज्यादा अधिक जप किया करते थे। पता है कौन सा वो हमेशा जप किया करते थे? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। वो कहते थे कि हरि नाम में अपराध बन जाता है, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु का नाम जप साथ साथ में करते रहे तो नाम जप में होने वाले अपराधों से भी हम बच सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक माला से पहले पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। तो ये बाबा जी महाराज कई कई माला चैतन्य महाप्रभु के इस मंत्र की करते थे, पंचतत्व मंत्र की करते थे। तो आप सोच सकते हैं उनकी स्थिति कैसी थी, कितना ज्यादा वो अटैच थे हरि नाम और चैतन्य महाप्रभु। सोना गोरांग सोनार गोरांगा, सोने के गोरांग उनके महाप्रभु के थे। बिहारी दास ने एक बार चार पांच बैलगाड़ी थी और उन्होंने कहा बाबा जी महाराज से, बिहारी दास ने, कि बाबा जी महाराज मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप जो है अभी बहुत वृद्ध हो चुके, आपको एक ही स्थान पर रहना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं मैं वृद्ध नहीं हुआ हूं, अब मैं नित्य लीला प्रविष्ट होना चाहता हूं और मैं चाहता हूं तुमने पूरा जीवन मेरी सेवा करी, हरि नाम की सेवा करी, मैं तुमको कुछ दे दूं ताकि तुम यहाँ पर एक समाधि स्थान, एक कुटिया, एक आश्रम बनाकर अपना जीवन यापन करो। तो बाबा जी महाराज की बात सुनकर ना बिहारी दास हंसने लगे, ये देंगे जिस मटके से जिस प्याले से पानी पीते ना वो भी टूटा हुआ है और ये कह रहे हैं मेरा मन कर रहा है तुम्हें 4-5 बैलगाड़ी क्या दे दूं, सोना आदि चांदी ऐसी सामान दे दूं। हंसने लगे उनकी बात सुन करके। तो कहते क्या हुआ तुम हंस क्यों रहे हो बिहारी दास? कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ बाबा जी कि आप तो खुद ही वैरागियों में सार्वभौम है, आपके पास फटी धोती ऊपर तन पे कपड़ा नहीं पहनते, टूटा हुआ कराया जिसमें आप पानी पीते हैं और आप कह रहे मैं 4-5 बैलगाड़ी तुमको ऐसे धन की देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन गुजर जाए। बाबा जी तो क्या आप कैसी बात करें। कहा तुमको गौरांग महाप्रभु विश्वास नहीं है और तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है, तुमको नहीं लगता अंतकाल में गौरांग महाप्रभु मुझे लेने के लिए आएंगे? और जब वो मुझे लेने के लिए आएंगे तो तुम्हें क्या लगता है गौरांग महाप्रभु से मैं कहूंगा कि बिहारी दास को दे दो तो क्या महाप्रभु दे नहीं पाएंगे? तुम्हें किस चीज पे डाउट है? वो चुप हो गए कि फेथ देखो, मतलब उनको विश्वास है कि गौरांग महाप्रभु आएंगे मुझे ले जाएंगे और मैं कहूंगा इसको दे दो तो दे भी जाएंगे, इतना विश्वास। तो ये बात सुनकर के उनको हंसी आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा जी महाराज आप जो कह रहे हैं वो बात सच है। तो फिर बाबा जी महाराज ने बात पलटते हुए कहा इसका मतलब तुम्हें 4-5 बैलगाड़ी सोने की आ सकती है हरि नाम लेने पर भी? देखो तुम्हारे जीवन में या तो मैं रह सकता हूं या तो धन रह सकता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो बिहारी दास कहते हैं ऑब्वियसली बाबा जी आप ही चाहिए। कहा ठीक है फिर तुम उस उम्मीद को छोड़ दो कि गौरांग मुर्मू आएंगे और मैं तुमसे बोलूंगा कि इसको धन दे, उम्मीद छोड़ दो। तो है ना इस प्रकार से उन्होंने अब दिव्य बातें करी और उसके बाद इस बात के बिहारी दास बाबा जी महाराज कहते हैं इस बात के 4 दिन बाद बाबा जी ने समाधिस्थ ग्रहण किया और जिस कदम वृक्ष के नीचे समाधि किया उन्होंने अपना नित्य लीला प्रविष्ट किया वहां पर कदम वृक्ष से पत्ते गिरते रहे, धीरे धीरे पत्ते गिर रहे थे, सूख गया वो पूरा वृक्ष और इस विरह में सूख गया कि बाबा जी चले गए। बाबा जी का विरह वो वृक्ष भी सहन नहीं कर पा रहा था और एक अमेजिंग एक ऐसा अद्भुत घटना हुई, सभी भक्त वहां बैठकर के निरंतर जप कीर्तन कर रहे थे, सबने देखा उस कदम वृक्ष की डाली डाली पर क्या छपा हुआ था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से बाबा जी महाराज की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी जीवन चरित्र कहने को है परंतु समय बहुत कम है तो हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। और इस प्रकार से 1897 में 147 वर्ष की आयु में बाबा जी ने अपनी लीलाएं समाप्त कर नित्य लीला प्रवेश किया। सार्वभौम वैष्णव श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि की। और साथ में रसिकानंद प्रभु जो कि रसिक मुरारी के नाम से भी जाने जाते हैं, 1590 में इनका जन्म हुआ। रोहिणी जिला जो कि उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पर है, वहां पर अच्युत देव राजा के घर में और उनकी माता जो थी भवानी, भवानी माता और अच्युत देव राजा, राजा रानी के घर में एक संतान उत्पन्न हुए। ये संतान जगन्नाथ दास, जगन्नाथ महा भगवान की कृपा से प्राप्त हुई थी। आप देखिए एक और संबंध, अभी हमने पहले सुना था कि एक रसिकानंद और एक आए हैं रसिक मंजरी जगन्नाथ बाबा जी महाराज। दूसरा संबंध, जगन्नाथ उनका नाम था बाबा जी महाराज का, और जगन्नाथ की कृपा से ही रसिकानंद प्रभु प्रकट हुए थे अच्युत देव महाराज राजा के घर में। तो इन ये जो थे इनका बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया गया, बहुत ही सुंदर स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा, उनका नाम श्यामा दासी था, श्यामा दासी नामक उनकी पत्नी, और बहुत ही सबमिसिव थी, बहुत ही ज्यादा सेवा किया करती थी। और उनके तीन पुत्र थे रसिकानंद प्रभु के, ग्रस्त आश्रम में थे, राधानंद कृष्ण गोविंद और राधा कृष्ण, राधानंद कृष्ण गोविंद राधा कृष्ण, इस प्रकार से तीन उनके पुत्र थे। और बहुत ही ज्यादा धार्मिक और बहुत ही ज्यादा वैष्णव सिद्धांतों का पालन करने वाले। तो एक बार ये ध्यान से बैठ करके जप कर रहे थे, रसिकानंद जो थे इनका नाम रसिकानंद था, ये बैठकर जप कर रहे थे और सोच रहे थे कब मेरे जीवन में गुरु मेरे जीवन में आएंगे, कब मेरे जीवन में गुरु आएंगे, कब मेरे जीवन में गुरु आएंगे। कहते हैं गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, लेकिन कृष्ण की कृपा से पहले जीवन में गुरु भी मिलते हैं। कृष्ण जब हमारे हृदय में देखते हैं कि हम सच्चा भाव से जप कर रहे हैं, तो अपने को चैत्य गुरु के रूप में समझते हुए हमारी इच्छाओं को वो विस्तार करते हैं हमारे सामने, हमारे दीक्षा गुरु को प्रकट कर देते हैं, और फिर उनके द्वारा हम सरेंडर होकर के उनके आदेशों का पालन करते हुए हमें वापस चैत्य गुरु हमारे को रिवील कर देते हैं, कृष्ण कृपा हमारे जीवन में लाते हैं। सो बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण वी गेट गुरु, बाय द मर्सी ऑफ गुरु वी गेट कृष्ण। तो ये रेसिप्रोकेशन एक दूसरे से, इस प्रकार से उन्होंने रात दिन जप किया और बोलते रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जप कर रहे थे और इतने में ही उनको एक आवाज सुनाई दी और कहा चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी तुम्हारे गुरु प्राप्त होंगे, है ना, और तुम्हारे गुरु का नाम होगा श्यामानंद। पहले ही बता दिया, रसिकानंद प्रभु को बता दिया था तुम्हारे गुरु का नाम होगा श्यामानंद। कितना अच्छा है ना, चैत्य गुरु असलियत में बता भी देते हैं तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, है ना। तो इस प्रकार से वो बहुत खुश हुए, उस रात्रि वो सोए नहीं और पूरी रात कीर्तन करते रहे, फिर दूसरे दिन कीर्तन करते रहे। अब तो परेशान थे को कब मिलेंगे। अब देखिए उनकी पुकार, उनकी हुंकार इस प्रकार से थी, ये ट्रांसेंडेंटल चीजें हैं, बहुत दिव्य स्तर पे हैं। कोई सोचे कि मैं जप कर रहा हूं कैसे मेरे गुरु को पता चलेगा, मेरे गुरु तो मायापुर में है, मेरे गुरु तो वृंदावन में, मेरे गुरु तो पुरुषोत्तम से जगन्नाथपुरी, मेरे गुरु तो विदेश गए। लेकिन वो जप कर रहे थे, जप करते करते गुरु का चिंतन कर रहे थे, श्यामानंद प्रभु की आवाज आई जप करते में, तुम चिंता मत करो, कल का सूरज अस्त होने से पहले मैं तुमको दीक्षा प्रदान कर दूंगा। अभी तो कोई गुरु है ही नहीं जीवन में और बोल रहे हैं, आ रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सी देव स्थिति में थे। रसिकानंद प्रभु जिनका नाम रसिक मुरारी भी कहा जाता है, ऐसे रसिक मुरारी जप करते 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 उस दिन सुबह उठे, बड़े ही पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह 3 बजे स्नान कर करके तैयार हो गए, आज मेरी दीक्षा होने वाली है। हम तो 2-4 साल पूरा हमें इस्कॉन पूरा चेक करता है और फिर हम गुरु के शरणागत होते हैं, फिर भी हम कंफ्यूज होते हैं, क्या मैंने डिसीजन सही लिया, क्या मैं सही हूँ, क्या ये रास्ता सही है, क्या गुरु सही है। लेकिन वो ऐसे थे, उनका हरि नाम पे इतनी श्रद्धा थी, गुरु उनके सामने प्रकट हो रहे थे। और वो देखते देखते क्या देखते हैं, सामने से एक 7 फीट लंबा व्यक्ति चला आ रहा है और बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु जैसा रूप है और बोलता हुआ चला आ रहा है क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो चले आ रहे हैं, साथ में उनके भक्त मृदंग करताल कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, और रसिकानंद प्रभु जैसे जाते हैं ना, वो समझ जाते हैं यही है श्यामानंद प्रभु, उनके चरणों पे लेट जाते हैं। लेटते ही वो भी समझ जाते हैं कौन है, रसिक मुरारी। रसिक मुरारी को गले लगाते कहते हैं हे रसिक मुरारी, तुम चिंता मत करो, तुम आज से मेरे शिष्य हो, रसिकानंद दास, है ना। तो रसिकानंद दास उनको दीक्षा प्रदान की जाती है, पहली बार मिलते, फर्स्ट मीटिंग, है ना। आप सोचिए कैसी स्थिति है। हम तो दीक्षा लेने के बाद भी दीक्षा के प्रति हमारा क्या नहीं होता है, शरणागति नहीं है। और उनकी शरणागति दीक्षा लेने से पहले ही है। इसलिए क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षाएं बहुत उत्तम थी, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सभी शास्त्रों को आत्मसात किया था। लेकिन हम कैसे हैं, दीक्षा लेने के कई वर्षों बाद भी शास्त्र को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, समय ही नहीं है हमारे पास में शास्त्र पढ़ने का। और इसीलिए कई भक्त शस्त्र चलाते नजर आते हैं आपस में, जो मिलता है वही मारते एक दूसरे को, लड़ाई या झगड़े करते हैं, क्योंकि शास्त्र कम होने से शस्त्र चलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, है ना। तो इसलिए शास्त्र को ज्यादा पढ़े तो शास्त्र निकलेंगे, शास्त्र अपनाए जाएंगे और शस्त्र कम चलेंगे। इस प्रकार से उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा होने के बाद में उनके गुरु ने कहा कि तुम बल्लभपुर नगर, आज भी है, बल्लभपुर नगर जाओ और वहां पर तुम राधा गोविंद की सेवा करो। तो वो राधा गोविंद की सेवा करने लग गए और 40 साल उन्होंने घूम घूम करके प्रचार किया। जिधर जाते थे, सच्चाई जिसे कहते हैं ना, ब्राह्मणा जो होता है वो समदर्शी होता है, उसके साक्षात उदाहरण है रसिकानंद प्रभु। जीवन में कभी मत भूलिएगा, कोई पूछे कि उसका उदाहरण कौन, बोले रसिकानंद प्रभु, पंडिता नाम समदर्शिना का, है ना। ब्राह्मणा गवि हस्तिने सुनी चाहे पशुपा किचा, पंडिता नाम समदर्शी। पंडित समदर्शी होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे चांडाल हो। ऐसे ही उन्होंने मुस्लिम लोगों को प्रचार किया, पशुओं को प्रचार किया। सोचिए आप, एक ही ऐसे डिवोटी है जो पशुओं को भी प्रचार किए, भक्त बना लिए। एक मोमडन था मुसलमान, उसने कई हाथी उनके ऊपर छोड़ दिए आक्रमण करने के लिए, उनको शराब पिलाई, मदिरा पिलाई और उसके बाद में उनको कहा, ये जो रसिकानंद है ना, श्यामानंद का चेला, ये आजकल सारे मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहा है, इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। और उन्होंने बहुत सारे गज हाथी छोड़ दिए उनके पीछे। काफी सारे हाथियों को आता हुआ देख करके, ये ऐसे भागे नहीं, हाथी आ रहे हैं तो बचाए अपने आप को। तो इनको सभी में क्या दिख रहा था, बहुत सारी आत्माएं मेरी ओर आ रही हैं शरणागत होने के लिए। प्रचार करने लगे, क्या बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ध्यान पूर्वक जप किया ना, तो सारे के सारे हाथी जो थे, सोचिए हाथी जो कि मतलब पागल मदमस्त हाथी, तो हम एग्जाम्पल भी यूज करते हैं ना, हाथी मत अपराध की, हाथी वाला अपराध वो सुनता ही नहीं, तोड़ डालेगा सब कुछ। ऐसे मत हाथी चले आ रहे थे और सिर्फ हरिनाम उनके मुख से, शुद्ध हरिनाम सुनकर के शरणागत हो गए, बैठ गए सारे हाथी। सारे हाथी बैठ गए और उसमें से जो उनका लीडर था, वो लीडर जो था वो क्या करने लगा, उसने ऐसे माला निकाला और एक रस्सी का वहां से फूल तोड़े और रसिकानंद प्रभु के गले पर पुष्प ऐसे डालने लग गया। और साथ में सूंड से सभी हाथी हुंकार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हरि नाम को दोहरा रहे हैं उनके पीछे। और उन्होंने बिठा करके पूरा क्लास देना शुरू कर दिया वहां पर, कि जीव तत्व क्या है, तुम कौन हो, कैसे सत्संग में बंद जाते हो। और बाद में यही नहीं, क्लास देना समाप्त किया उसके बाद में दीक्षा भी प्रदान किए और उस हाथी को नाम दिया गोपाल दास। हरी हरी बोल, है ना। सोचिए आप, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी दिन कभी कुत्ता अंदर आ जाए और पता चले हम उसे प्रचार कर रहे, क्लास में बिठा रहे, आओ प्रभु तुम यहाँ बैठो, कुकुरदास ये है ना, ये है, ऐसे कभी हम बोल सकते हैं, हमारी स्थिति नहीं है। हम तो कहेंगे क्लास बंद करो, कुत्ता आ गया अंदर, एक कुत्ता आ गया, दृष्टि नहीं है हमारी। तो पंडिता नाम समदर्शना, बहुत ही अमेजिंग उनकी लीलाएं बहुत सारी हैं, पर एक और लास्ट पास से बताऊंगा। तो उसमें वर्णन किया गया है कि जब जगन्नाथ पुरी में थे ना, तो उनका बहुत ज्यादा प्रेम था जगन्नाथ भगवान के प्रति, क्योंकि जगन्नाथ जी की कृपा से ही राजा अच्युत देव को रसिकानंद प्रभु प्राप्त हुए थे। इसलिए उनके पिता उनको सदा एक मंत्र स्मरण कराते थे, क्या, नीलांचला निवास्या नित्या परमात्मने बलभद्रा सुभद्रा भयम श्री जगन्नाथाय ते नमः। सदा जगन्नाथ का मंत्र बोलते रहते थे, जगन्नाथ के प्रति बहुत भाव था। एक बार प्रचार कर रहे थे और अंदर ऐसा भाव आया कि अभी तो पूरी में रथ यात्रा होने वाली है, तो इन्होंने कहा मैं रथ यात्रा में जाना चाहता हूँ और प्रचार भी नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन फिर सोचा कि रथ यात्रा निकल जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए, चलना चाहिए अभी प्रचार छोड़ करके, जगन्नाथ का दर्शन करना है। जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पैदल चल करके पुरी पहुंचे और यहाँ पर जगन्नाथ ने अजीब लीला करी। राजा गजपति जो थे, उस समय गजपति राजा होते थे, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ वहां से चला और कुछ ही दूर चलने के बाद में जब यहां पर इनके मन में आया भाव कि मैं जगन्नाथ को देखूं, तो जगन्नाथ के मन में भी भाव आ गया, क्या, कि मैं रसिकानंद को देखूं। और जगन्नाथ जी खड़े हो गए, जगन्नाथ जी चलना बंद कर दिए। गजपति राजा ने कहा कोई बात नहीं है, आज भगवान थोड़े ज्यादा निष्ठुर हैं, चल नहीं पा रहे, चिंता मत करिए, हम हाथी लगाएंगे। राजा ने अपने हाथी मंगाए, 100 हाथियों की रस्सी लगाई गई और रथ को खींचने, सारे हाथी चिंघाड़ते थे ऐसे, हरी बोल लोग चिल्लाते थे, जय जगन्नाथ, लेकिन एक इंच भी रथ आगे नहीं बढ़ा और भगवान पूरा निष्ठुर होकर बैठे रहे। किसके लिए? एक भक्त के लिए, रसिकानंद। जगन्नाथ जी तो बार बार रुक जाते हैं, बड़े हटी हैं, कई भक्तों के लिए रुक जाते हैं, साल बेग के लिए भी रुक गए थे, है ना, भगवान बहुत बार रुकते हैं, लेकिन इस बार रसिकानंद प्रभु के लिए रुके हुए थे। और रुकने के बाद में वहां रुके रहे, रसिकानंद प्रभु जब पहुंच गए, उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया, तो जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर चढ़े और उनके लिए कुछ सिल्क का कपड़ा लेके आए थे। प्रचार में किसी ने उनको भेंट किया था, राजा का पुत्र था, इतना बड़ा वैरागी है, तो कुछ भेंट किया तो लेकर के इन्होंने जगन्नाथ जी को दिया, जगन्नाथ जी के हाथों पे डालने के लिए। जैसे ही दिया तो राजा गजपति जो थे ना, वो बड़े प्रसन्न हुए, उनसे कहा कि देखो हमने सारे हाथी हटा दिए, जिस पल आपने भगवान का दंडवत किया और भगवान को प्रणाम किया और उनको ये सिल्क का कपड़ा प्रदान किया, हमारा रथ अपने आप ही चलने लग गया है ना। वो राजा हैरान था देखकर के, जिस पल रसिकानंद प्रभु चढ़े हाथी हट गए हैं तो फिर क्या अपने आप ही रथ चल रहा है, अब भगवान को कोई खींचने वाले की जरूरत ही नहीं है, सारे लोग उदास थक के बैठ गए तब रथ अपने आप चल रहा है आगे। तो ऐसी लीला हो रही है, रसिकानंद प्रभु ऊपर बैठे हुए हैं रथ के और रथ चल रहा है ना। तो राजा हैरान थे, राजा बोले आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं जगन्नाथ जी का दास हूँ, रसिकानंद दास, रसिकानंद प्रभु, वो नाम उन्होंने बताया। तो राजा बहुत खुश है, बोले मैं आपको है ना ऐसी इतने अच्छे भक्त के लिए कुछ भेंट देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन में मेरी सब इच्छाएं भगवान ने पूर्ण कर। कहा नहीं नहीं कुछ तो ले लीजिए। तो कहा ठीक है मुझे एक जमीन दे दीजिए जहां पर भगवान की सेवा कर सके। तो उन्होंने पुरी के पास ही एक स्थान उनको प्रदान किया और उस स्थान पे उन्होंने आज भी है वो कुंज मठ के नाम से, और उस कुंज मठ में एक डीटीस से जिनका इंस्टॉलेशन किया गया था बट कृष्ण के रूप में, बट वृक्ष था उसके नीचे कृष्ण थे तो बट कृष्ण, लेकिन अभी उनको उनको बोला जाता है राधा रसिक राय। क्या बोला जाता है? राधा रसिक राय, क्योंकि रसिकानंद प्रभु के थे इसलिए उनका नाम है राधा रसिक राय। साथ में ललिता विशाखा भी है राइट साइड में, बीच में कृष्ण है राधा रसिक राय और इधर राधा रानी, इधर रसिक राय, ऐसे है। तो ललिता विशाखा राधा रसिक राय जीव की जाय। और इस प्रकार से वो एक बार जगन्नाथपुरी से चले अपने भक्तों के साथ में, और चलते चलते खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर श्री माधवेंद्रपुरी जी के लिए भगवान ने खीर का कटोरा चुराया था, खीर का कुल्लड़ चुराया था। तो ऐसे स्पेशल लीला करने वाले जो खीरचोर गोपीनाथ हैं वहां वो पहुंचते हैं और फिर जोर जोर से कीर्तन करने लगते हैं, विरह का अनुभव करने लगते हैं, कृष्ण से विरह का अनुभव होता है। और देखते देखते ही उनके 7 शिष्य उनके साथ में थे जो कीर्तन कर रहे थे और क्या बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से वो क्या होता है, जब ये कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन में कई बार ऐसे होता है हम हाथ ऐसे करते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, हरे कृष्णा ऐसे कर रहे थे, और जब आंख खोली तो क्या देखा, रसिकानंद प्रभु जो है ना वो डिसअपियर हो गए खीरचोर गोपीनाथ के अंदर। जैसे चेतन महाप्रभु टोटा गोपीनाथ के अंदर प्रवेश कर गए, रसिकानंद प्रभु खीरचोर गोपीनाथ के अंदर प्रवेश कर गए। और कहा जाता है कि चतुर जो विष्णु है, जिस प्रकार से अनिरुद्ध प्रद्युम्न वसुदेव है ना संकर्षण, उसमें से जो अनिरुद्ध है उनका अवतार है रसिकानंद प्रभु, इसी के कारण वो वापस पुनः भगवान के विग्रह में समा जाते हैं और रसिकानंद प्रभु विलीन हो जाते हैं। जब इस प्रकार से दर्शन होता है तो साथ के साथ शिष्य इतना विरह का अनुभव करते हैं, बाकी जो लोग थे ना वो देखने आ जाते हैं, यहाँ पर हजारों हजारों लोग कीर्तन कर रहे हैं ऐसा शोर हो रहा था, और देखते हैं कि रसिकानंद प्रभु तो डिसअपियर हुए, साथ में उनके 7 शिष्यों ने, इतना अनुराग था अपने गुरु के प्रति, 7 शिष्यों ने एक ही समय पर अपने शरीर को त्याग दिया और सबके सब वहां पर शरीर त्याग करके, वो तो डिसअपियर हो गए थे शरीर के साथ ही, लेकिन ये शरीर छोड़ करके चले गए 7 शिष्यों ने। और इसीलिए आज भी खीरचोर गोपीनाथ में माधवेंद्रपुरी जी की समाधि के साथ साथ रसिकानंद प्रभु की समाधि है और उनके शिष्यों की समाधि भी है वहां पर। तो और आजकल वहां पर ये जो महीना है ना फाग महीना, फागुन का महीना, होली से पहले, तो 12 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, रसिकानंद प्रभु डिसअपीयरेंस डे हम मना रहे हैं। जैसे आज हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं हम सेलिब्रेट करते हैं, वहां इतना बड़ा उत्सव है, 12 दिनों तक प्रसाद वितरित किया जाता है, जो भी आएगा उसको प्रसाद प्रसाद, बहुत बड़ा भंडारा और 12 दिन प्रसाद चलता है। महाशिवरात्रि के आसपास का ये शिवरात्रि मनाई जाती है, फिर लगातार चलता रहेगा 12 दिनों तक। गौर पूर्णिमा तक ये फेस्टिवल ऐसे चलाएंगे। तो मेन 12 दिनों तक रसिकानंद राय देरो भाव तिथि को रेमुणा में बनाया जाता है, बालेश्वर में। तो ऐसे अद्भुत भक्तों ने, भक्त हैं, उन्होंने कई ग्रंथ दिए हैं, जैसे श्यामानंद शतक, श्यामानंद शतक, और भक्त भागवत शतक, और कुंजल केली द्वादश अष्टक। इस प्रकार से तीन महान ग्रंथ रसिकानंद प्रभु के द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु की अनेकों लीलाएं हैं, लेकिन समय हमारा काफी हो गया है, आप लोगों को जाना होगा। तो रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि की जय। और आज साथ में हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरुभाव भी है। आज ही के दिन महाराज श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और उन्होंने अपने नित्य लीलाओं में प्रवेश किया। मायापुर से जब वो वापिस आ रहे थे एक बार महाराज, तो उन्होंने फुलिया ग्राम के आसपास उनके कार का एक्सीडेंट हुआ, और इस प्रकार से महाराज ने, वो तो एक लीला की, उनकी कार पलट गई थी और महाराज उन्होंने प्रवेश किया नित्य लीलाओं में। तो उनके अनेकों भक्त हैं, बहुत ही शरणागत हैं, और उन्होंने बहुत प्रचार किया। कहते थे, ऐसा प्रीचिंग करते थे, इधर से चलते थे बस के अंदर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और मतलब पीछे गेट से चले और आगे गेट में उतरेंगे जहां बस का आखिरी स्टॉप में, उतनी देर में जितने लोग हैं उसमें से 50% का हेड शेव हो जाएगा, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करते थे, पूरा एकदम प्रचार। महाराज के बहुत सारे स्पेशल वीडियोस भी हैं देखने योग्य हैं, महाराज कैसे बताते हैं डेमी गॉड्स वर्सेस कृष्णा, बहुत ही स्पेशल था। और कैसे वो साईं बाबा से लेकर के और कृष्ण तक के सभी भक्तों को साथ बिठा करके प्रचार कर रहे हैं कि कृष्ण कैसे परम है, और उन पूरा ब्रह्म संहिता को कोट करके उन्होंने पूरा किया। बहुत सुंदर महाराज का प्रचार था। श्रील प्रभुपाद जी एक बार जब उनको दीक्षा दे रहे थे, जयपुर में उनकी दीक्षा हुई थी, संन्यास दीक्षा, तो उनको जब दीक्षा दे रहे थे तो प्रभुपाद जी उनको दंडा दिया, बोले आज से आपका नाम है हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी। जैसे ही दंडा दिया तो फिर प्रभुपाद ने वापस दंडा ले लिया, तो बोले प्रभुपाद मैंने कोई ऑफेंस किया क्या? तो कहते नहीं, पहले मुझे ये बताओ तमाल कृष्ण कि जब तुम प्रचार करने जाते हो किसी के बड़े ऐश्वर्यशाली के घर पे और उसकी पत्नी को देखते हो, तो मन में आता है कि अगर मैं ब्रह्मचारी ना बना होता तो मेरा भी आज मेरी भी ऐसी पत्नी होती, ऐसा भाव आता है? कहा कि नहीं। कहा या फिर उनके बच्चों को, उनके ऐश्वर्य को देख के ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने जीवन को कृष्ण सेवा में समर्पित नहीं किया होता तो आज भी मेरा घर इतना बड़ा होता, मेरे भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते, ऐसा भाव तो नहीं आता? कहा नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं आता। कहा ठीक है, फिर तुम ले लो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो इस तरह से तमाल कृष्ण महाराज जी को दीक्षा दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो बहुत ही प्रखर जैसे कहते हैं ना प्रचारक थे। श्रील प्रभुपाद जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे वृंदावन में, रात दिन जहां प्रभुपाद चलते थे वहां पर तमाल कृष्ण महाराज उनके साथ रहते थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए, बाकी और भक्त उनके बारे में ज्यादा जानते हैं, मैं अधिक नहीं जानता हूं। तो हम प्रार्थना करेंगे आज इन तीन महान वैष्णव हम पर कृपा करें कि हम भी ध्यान पूर्वक जप कर सकें, रसिकानंद प्रभु की तरह शास्त्रों के प्रति हमारी शरणागति हो, और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की तरह हमारी प्रचार की जो है ना हमारे अंदर भावना रहे, और श्रील प्रभुपाद जी के सेवा कर सकें हम जब तक हम इस शरीर के अंदर विराजमान हैं। हरे कृष्णा। श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री जगन्नाथ दास, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौड़ निताय की, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि की, श्री रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि की, श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।
इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु की।